ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों की बातचीत के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के ये अधिकारी कल फिर से बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने कल भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक से बात की और उनके बीच यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे। दोनों पक्षों को सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि देर रात संवाददाता सम्मेलन के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों पक्षों के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद पाकिस्तान द्वारा सहमति का बार बार उल्लंघन किया गया है। भारत ने इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लिया और सशस्त्र बलों ने इन का पर्याप्त और उचित जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान से इन उल्लंघनों को रोकने और स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। भारतीय सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। भारत का कहना है कि भविष्य में किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को उसके खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और नई दिल्ली उसी के अनुसार जवाब देगी। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे जो भी कार्य सौंपे गए उसने पूरी कुशलता के साथ उन्हें पूरे किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा है कि सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से चलाए गए। अभी ऑपरेशन चल रहे हैं और उचित समय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने सभी से आग्रह किया है कि वे अटकलबाजी से बचें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए विश्व के कई नेताओं ने इसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों देशों से इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की विदेशी मामलों की प्रमुख काजा कालस ने युद्ध विराम के महत्व और इसे कायम रखने के लिए सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में उम्मीद जताई है कि यह संघर्ष विराम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बहाल करने में योगदान देगा। सरकार ने कहा है कि युद्ध के कई गेमिंग वीडियो हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में प्रसारित किए जा रहे हैं। लोगों को ऐसे प्रोपेगंडा से बचने की सलाह दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे गेमिंग वीडियो बड़ी संख्या में दिखाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री के कार्यालय के नाम से व्हाट्सएप पर ऐसा संदेश भी प्रसारित हो रहा है जिसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति के मद्देनजर नागरिक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये संदेश फर्जी हैं और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इस संवेदनशील समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर भेजी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, ये पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा।
रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से देश की मारक शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस पर इस सुविधा का शुरू होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने एक रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले एक दशक में विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत में वो अपने परमाणु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच आज ओमान में परमाणु वार्ता का नया दौर होना है। कल दोहा में चौथे अरब ईरान सम्मेलन में श्री अराघची ने जोर देकर कहा था कि ईरान हमेशा ही परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य रहा है और यूरेनियम संवर्धन सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार रखता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी विलंब के 15 मई तक बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन संबोधन में कहा कि प्रस्तावित वार्ता तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में होनी चाहिए। इसमें दोनों देश नए युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो सकते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि वे इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब एर्दोगन से बात करेंगे। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी अब तक नहीं की है। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने बलूचिस्तान में 39 अलग अलग जगहों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। एक प्रेस विज्ञप्ति में बीएलए ने घोषणा की है कि यह ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसमें कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। बीएलए के प्रवक्ता जीएन बलूच के अनुसार हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन, सैन्य काफिले और प्रमुख राजमार्गों के किनारे ढांचागत सुविधाएं शामिल हैं। बीएलए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक सशस्त्र अलगाववादी गुट है जो लूच लोगों के लिए आजादी चाहता है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आतंकरोधी कानून के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा होने तक जारी रहेगा। कल रात ढाका में अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद ने एक विशेष बैठक में ये निर्णय लिया। परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध कानून में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल, उससे संबद्ध निकायों या समर्थकों को दंडित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। इस संबंध में आवश्यक परिपत्र शीघ्र जारी किया जाएगा। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले मॉनसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले 13 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों और दक्षिणी अंडमान सागर पर मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इस वर्ष मॉनसून सामान्य से अधिक 105% होने का भी अनुमान व्यक्त किया है और यह लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मॉनसून वर्षा का अनुमान लगाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 27 स्वर्ण और 22 रजत पदकों सहित 74 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। कर्नाटक 14 स्वर्ण और 19 रजत पदक सहित 39 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान 11 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित 23 पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। आयोजन के 8वें दिन आज मुक्केबाजी, हॉकी, कुश्ती, योगासन और तलवारबाजी की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। श्रीलंका के कोलंबो में खेले जा रहे महिलाओं के त्रिकोणीय एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मैच में भारत के 343 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 25वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 342 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने शतक लगाते हुए 101 गेंदों में 116 रन बनाकर भारत के लिए विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं हरलीन देओल ने 47 रन और जेमिमा रोड्रिक्स ने 44 रनों की शानदार पारी खेली है। दुनिया भर में आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ये माताओं के प्रति उनके प्रति प्रेम, देखभाल और त्याग के लिए आभार व्यक्त करने का समय है। इस अवसर पर नागालैंड में गिरिजाघरों में माताओं के सम्मान में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।